नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 92.72% मतदान दर्ज हुआ। वहीं तमिलनाडु में 85.14% का अभूतपूर्व मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी मतदान को बदलाव के लिए बड़ा जन समर्थन बताया और कहा कि 4 मई को मतगणना के साथ राज्यों में 15 वर्ष पुराने टीएमसी के शासन का अंत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ एसएस संधु और डॉ विवेक जोशी ने लाइव वेबकास्टिंग के जरिए मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। पश्चिम बंगाल में बाकी 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जबकि सभी 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। मतदान संपन्न होने के बाद निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा को संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत मतदान केंद्र के कैमरों में इस्तेमाल किए गए एसडी कार्ड को मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद नहीं निकाला जा सकता है। इन कैमरों को सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इन एसडी कार्ड्स को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में नामित डेटा संग्रह और प्राप्ति केंद्र पर ही निकाला जा सकता है। मतदान के दौरान लिए गए सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए। मतदान दल या बूथ स्तरीय अधिकारी के सभी सदस्य कैमरा उपकरण को पूरी तरह हटाए जाने तक मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने लोगों को हवाई या सड़क किसी भी माध्यम से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में पाबंदियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से निर्धारित सीमा मार्गों से ही देश छोड़ने और दूतावास से समन्वय बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कल रात व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इसराइल और लेबनान 3 सप्ताह के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इसराइल के वॉशिंगटन स्थित राजदूत येचिल लीटर और लेबनान की अमेरिका स्थित राजदूत नाडा मोवाद की अमेरिकी मध्यस्थता में हुई बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी की। ट्रंप ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में इसराइल और लेबनान की अमेरिकी राजदूतों के बीच हुई ये दूसरी बैठक बहुत सफल रही। ब्रिक्स मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों के समूह मैना के परामर्श सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय में दक्षिणी क्षेत्रों की सचिव डॉ नीना मल्होत्रा ने रूस के उप विदेश मंत्री बोरिसेंको जॉर्जी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों मैना क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मना रहा है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश समारोह में पढ़ा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश देश के पंचायती राज संस्थानों तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों में प्रचारित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोटक महिंद्रा बैंक और नगर निगम पंचकुला से जुड़े धोखाधड़ी मामले में छापेमारी की है। ये मामला धनशोधन से जुड़ा है। ईडी ने बताया कि चंडीगढ़, पंचकुला, जीरकपुर, डेराबसी और राजपुरा में 12 ठिकानों पर तलाशी ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर किया जाएगा। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कल रात मुंबई इंडियंस को 103 रन से हरा दिया। जीत के लिए 208 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस 19 ओवरों में मात्र 104 रन ही बना सकी। चेन्नई की संजू सैमसन को 54 गेंद पर नाबाद 101 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।